ओम शांति।
अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि क्योंकि ईश्वरीय साहित्य में बहुत कुछ किताबें बनी, लेकिन विद्या की देवी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती के बारे में बुक बनाने का सौभाग्य बाबा ने मुझे ही दिया, इसलिए ये बहुत बड़ा नशा है। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी शायद आपने देवी पुराण तो सुना होगा ना, एक किताब ग्रंथ लिखी हुई है देवी भागवत पुराण, उसमें देवी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है ये मुझे बड़ा नशा है कि तो बाबा ने मेरे से इस संगमयुगी जीवन में जो मम्मा की किताब बनाई, शायद उसी के आधार पर भक्तों ने द्वापर युग से वो देवी पुराण लिखी होगी। बाकी मुझे बहुत खुशी हो रही, इतनी सारी महारथी भाई बहने शिव शक्तियां बैठे हुई है, उनका दर्शन लेना, उनके साथ समय बिताना मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। आज आप लोगों ने मुरली में भी सुना होगा बाबा ने मम्मा को याद किया, ये है बड़ी मम्मा या दूसरी है छोटी मम्मा, माताओं को संभालने के लिए इस मम्मा को आगे रखना पड़ा। अगर वैसे हम इस ज्ञान के बारे में सोचते जाए, ये ज्ञान बड़े वंडरफुल है, बहुत रमणीक। जितना जितना आप लोग इसकी गहराई में जाएंगे, उतनी नई नई बातें, नई नई रतन, नई नई हीरे मिलते हैं। आप लोगों ने तो सब समझते हैं कि ये भक्ति मार्ग की जो ग्रंथ है, कहानियां है, उसमें शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और श्री कृष्ण का, तीनों की जो बायोग्राफी है मिक्स चल रहा है, तीनों को मिक्स करके ग्रंथ लिखे हुए हैं। उसी प्रकार संगम युग में शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का, ये तीनों पार्ट मिक्स और साथ साथ चले हैं और चल रहे हैं। आपने कभी सोचा है जगदम्बा कौन है? जगदम्बा कौन है, कौन बताएंगे? जगत पिता कौन है? जगन्नाथ कौन है? है इनके बारे में थोड़ा आपने चिंतन किया? बाबा बोलते जगत पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, तो भक्ति मार्ग में जगत पिता किसको बोलते हैं? परमात्मा को बोलते हैं। तो जगत पिता शिव बाबा है, तो जगदम्बा कौन है? मम्मा, ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? कोई कुछ नहीं बता रहे, क्या बात? क्या मेरा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या आप बोलना नहीं चाहते? क्योंकि इस सृष्टि नाटक में बाबा बोलते हैं मैं करण करावन हार हूं। इसका अर्थ क्या है? मैं करता भी हूं, करके कराता हूं, सबसे पहले मैं ही करता हूं, उसी को बच्चों को सिखाता हूं और उनसे कराता हूं। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति है, या शिव बाबा को त्रिमूर्ति बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? शिव बाबा ने त्रिमूर्तियों की रचना की, इसलिए त्रिमूर्ति बोलते हैं। तो फिर भक्ति मार्ग में शिव को शंकर क्यों बताया और विष्णु को क्यों परमात्मा बताया? कृष्ण की ऊपर परमात्मा बताया, क्योंकि ये सारे संगम युग का ही खेल है भक्ति मार्ग में। तो इसलिए कई बार बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं या वेद पुराणों भी लिखा हुआ है, परमात्मा निराकार पराशक्ति है, परम शक्ति। जब सृष्टि का जो सृष्टि पर जो राक्षसों का असुरों का ज्यादा हो गया, तब उन्होंने क्या किया, त्रिमूर्तियों की रचना की, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उस त्रिमूर्तियों ने क्या किया, जो पराशक्ति का जो दूसरा रूप है आदि देवी, आदि देवी को मुकरर करके उनको अपने सारे शस्त्र अस्त्र को उनको देके सृष्टि पर जो असुर थे उनका संहार किया गया। ये है संगमी की कहानी। पराशक्ति कौन है, शिव बाबा परम शक्ति। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों है, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति है बेने। एक बार बाबा ने व्यक्त बापता ने दीदी से प्रश्न पूछा, मनमोहन दीदी से, ब्रह्मा ही विष्णु बनता है तो शंकर कौन बनता है, क्योंकि बाबा कई बार बोले शंकर का कोई काम ही नहीं, पार्टी नहीं, और विष्णु है कहां, वैसे देखा जाए विष्णु है ही नहीं, चार भुजा वाला कोई होता है क्या, नहीं। ब्रह्मा स्वरूप लक्ष्मी नारायण का जो युगल रूप है वो विष्णु है, तो विष्णु एक व्यक्ति तो होगा ही नहीं। इसका अर्थ है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवता नहीं है, एक ही है आत्मा, तीन पार्ट है। ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु की पार्ट और शंकर का पार्ट बजाते हैं। इसलिए न संगम युग न विष्णु है न शंकर है, सिर्फ ब्रह्मा का पार्ट चलता है। ये ब्रह्मा का ये जो है ना, ये विष्णु और शंकर ये स्वरूप है, अवस्था है, पार्ट है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर वो पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, पर्टिकुलर आत्मा नहीं है, वो तीन पार्ट है। ये तीन पार्ट सबसे पहले कौन बजा के दिखाता है, कौन बजाता है, शिव बाबा। ब्रह्मा का अर्थ क्या है, ब्रह्मा तो पहले था ही नहीं, शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा को की रचना करता हूं। ब्रह्मा अर्थात सृष्टि स्थापन करने वाला, तो सृष्टि का स्थापन करने वाला सृष्टिकर्ता कौन है, कौन है, शिव बाबा है ना। तो शिव बाबा भी ब्रह्मा का पार्ट बजाते हैं, विष्णु का पार्ट बजाते हैं, अर्थात बाप दादा दोनों मिलके विष्णु बन के युगल बन के संगम युग में हम बच्चों की पालना करते हैं, और शंकर बन के हम लोगों को योग सिखाते हैं, पापों को भस्म कराते हैं। ये पार्ट है, तीन रोल। शंकर परमात्मा नहीं है, शंकर एक रोल है, एक पार्ट है। जैसा ड्रामा में किसी किसी का पार्ट होता है, रानी लक्ष्मीबाई का पार्ट होता है, राणा प्रताप का पार्ट होता है, ये जो पार्ट है ना ऐसा पार्ट है ऐसा। इसलिए बाबा को त्रिमूर्ति कहा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा भी ब्रह्मा बन के विष्णु बन के शंकर बन के पार्ट बजाते हैं। वैसे ही हर आत्मा हर बाबा का बच्चा त्रिमूर्ति का पार्ट बजाते हैं। इसलिए कई बार दादी गुलजार जी कहा करते थे, हम जब छोटे छोटे थे तब बाबा क्या कहते थे, बच्चे तुम त्रिमूर्ति हो, सुबह जब उठती है तब क्या समझो अपने आप को, ब्रह्मा समझो, दिन जो होता है कर्म में आते हैं तो विष्णु समझो, जब रात को सोते हैं तब अपने आप को शंकर समझ के सो जाओ। वैसे ही ये जो जगदम्बा जो है ना, ये एक पार्ट है। सबसे पहले शिव बाबा जगदम्बा बनके जगत का कैसे पालन करना है वो सिखाता है ब्रह्मा बाबा को। तो सेकंड नंबर के जगदम्बा है ब्रह्मा बाप, इसलिए बड़ी मम्मा पापा बोलते हैं। तो उसको फॉलो करके सरस्वती मम्मा जगदम्बे का पाठ हो जाते हैं। इस प्रकार ये तीनों मिलके मिलके इकट्ठे पाठ चलते हैं। अब आते हैं मम्मा के बारे में। बाबा ने कई साकार मूल्यों में बताया, बच्चे मम्मा बाबा के तख्त नसीन बनने का पुरुषार्थ करो। इसके बारे में कभी किसी ने सोचा? ये भी बहुत बड़ी गहरी बात है। बाबा ये नहीं कहते तुम लक्ष्मी नारायण बनो, बोलते तो है लेकिन कभी कभी खास बताते हैं, मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करके उनका दिल तक, उनका तख्त नसीन बनो। तो उनका तख्त अलग है लक्ष्मी नारायण के तख्त से, कभी चिंतन किया आपने? बाबा कई बार वो मिसाल देते हैं, एडवर्ड वन, एडवर्ड टू, एडवर्ड थ्री, ये कैसा है? सोच रहे इसके बारे में। अभी तो जून महीना चल रहा है, सबके मन में मातेश्वरी जी के याद तो आते ही रहते हैं। मम्मा के बारे में आप लोग भी बहुत कुछ जानते होंगे, सुने होंगे। मुझे जो समय मिला हुआ है, इस समय मैं कोशिश करूंगा मम्मा के बारे में बताने की, क्योंकि मैं मम्मा से पालन नहीं लिया, मैं उतना पुराना नहीं हूं, लेकिन बाबा ने मुझे मम्मा के बारे में किताब बनाने के एक सौभाग्य दिया था, उसके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं मातेश्वरी मम्मा, उनका जन्म कहां हुआ? पंजाब के अमृतसर में 1919 में। उनके पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे, आप जानते होंगे, वो भी बॉम्बे, कलकत्ता और विदेश में उनका बहुत बड़ा व्यापार था घी का। अचानक उनका जो शिप है, जहाज है, समुद्र में डूब गया, तो सारा का सारा एक ही बार नुकसान हो गया। तो उनके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, तब मम्मा बंबई में पढ़ती थी। फिर जब उनके पिताजी का देहांत होने के बाद वो कहाँ आए? फिर अमृतसर आए। अमृतसर से फिर वो जो है सिंध हैदराबाद आए, वहां जहां उनकी मामा और नानी रहते थे। तब से कहानी शुरू हो जाती है। जब मम्मा बाबा के तख्त नसीन बनना है तो मम्मा बाबा जैसे पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बाकी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मम्मा कैसे पुरुषार्थ करती थी। तो मम्मा तो यज्ञ में सबसे छोटी तो थी, 17 साल के आयु के करीब से 17 साल की उम्र में वो ज्ञान में आए थे। मम्मा के बारे में पुरुषार्थ के बारे में आप जानते हैं कि मम्मा एकांत प्रिय बहुत रहती थी, उनकी धारणाएं बहुत थी। मुरली पर बहुत उनका प्यार था, कम से कम 3 बार मुरली पढ़ती थी। लेकिन उनके तो कुछ स्लोगन तो आप जानते होंगे, मम्मा का एक ही विशेष स्लोगन मशहूर था, हुक्म हुक्म चला रहा है। मतलब बाबा आज्ञा देते हैं हमें करना है, मम्मा ने कभी ना नहीं कहा, ये तो आप जानते हैं। तो इसके मिसाल तो आपने कई बार देखा भी होगा। एक कहानी, एक कोई एक पार्टी आई थी तो बाबा ने बोला वो जाने वाले हैं, तो उनको हलवा बनाने के लिए कहा। कौन सा हलवा? वो भी खास हलवा। वो हलवा बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है बताते हैं, तो फिर भी मम्मा ने ना नहीं बोला, हलवा बनाया। वो हलवा तैयार होके जब वो लोग बस में बैठे थे तब तो पहुंचाया गया। एक कहने का भाव है, ये इससे हमें क्या सीखना है। यज्ञ में इतनी सेवाएं आती है, बड़े कोई भी सेवा बताते हैं उसके लिए ना नहीं कहना, कहना ये तो किसकी आज्ञा है, बाबा की आज्ञा है। तो बाबा को कितना सम्मान देती थी, रिगार्ड देती थी, उतना ही बाबा भी मम्मा को रिगार्ड देता था। तो मुझे इस समय एक बात लौकिक भक्ति मार्ग की बात याद आती है। तो कहते हैं देवी पुराण में एक प्रसंग आता है, वहां लिखा गया है कि सरस्वती का जो पूजा करने का जो संप्रदाय है ना, रीति रिवाज, उसको किसने लाया इस दुनिया में। कहते हैं श्री कृष्ण लाया। श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा का जो विधि विधान है ना, इस संसार में शुरू किया बताते हैं। तो ये किस बात की यादगार है, आप यज्ञ कहानी में सुना होगा। एक बार बाबा बच्चों को लेके पहाड़ गए थे घूमने, उसमें जगदीश भाई भी थे। जब पहाड़ गए तो बाबा ने बोला बच्चों को, बच्चे छोटे छोटे जो लकड़ियां होते हैं ना, उनको चुन के एक गट्टी बांध के गांठ बांध के चलो। तो रास्ते में बाबा ने जगदीश भाई से पूछा, बच्चे मम्मा की आरती जानते हो? तो उन्होंने कहा, बाबा जानता तो था लेकिन पूरा याद नहीं आया, क्योंकि आपने तो बताया था, आज भी बताया ना बाबा ने, जो कुछ तुमने लौकिक में पढ़े हो वो भूसा है, उसको भूल जाओ। इसलिए मैं सब कुछ भूल गया, मुझे याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, जितना याद है उतना बता देना। तो जब पांडव उनके गेट पर आए तो मम्मा इनके इंतजार के लिए खड़ी थी स्वागत करने के लिए। तब बाबा ने कहा, बच्चे मम्मा की पूजा करो, आरती गाओ। जो संगम युग में जो बाबा ने जो मम्मा के लिए जो पूजा करवाई, तो इस प्रसंग को उन्होंने क्या लिखा, सरस्वती की जो पूजा की जो विधि विधान है ना, उसको किसने प्रचार लाया, श्री कृष्ण लाया। तो श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण की आत्मा जो संगम में ब्रह्मा बनी है, तो उन्होंने यह संप्रदाय शुरू किया। तो वैसे और एक बात आती है, सरस्वती का जन्म कैसा हुआ, कोई जानते सरस्वती का जन्म कैसा हुआ? ये कहते हैं कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण का जो जिह्वा है, जिह्वा माना जीव, उसके अग्रस्थान पर बीच से जन्म हुआ। एक होता है सामने से, एक होता है एकदम पीछे से, एक होता है अग्रस्थान। जैसे मंदिर में कहते हैं गर्भस्थान बोलते हैं, उसका बड़ा महत्व रहता है, वहां सबके लिए जाने के लिए अनुमति नहीं होती, कोई विशेष व्यक्तियों के लिए, उसके लिए बहुत साफ सुथरा पवित्रता ये सारा होना चाहिए। उसी प्रकार कहते हैं श्री कृष्ण का जो जीव के अग्रस्थान से सरस्वती का जन्म हुआ। इसका अर्थ आप तो जानते हैं ना, श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण बनने वाले आत्मा ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से किसका जन्म हुआ, सरस्वती का जन्म। तो फिर ये कहते हैं, फिर शास्त्र में एक बात आती है, ब्रह्मा जिसको सृष्टिकर्ता बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बोला, सरस्वती तुम भूलोक जाओ, वहां कोई योग्य व्यक्ति को ढूंढो, ढूंढ के उसके जीव पर बैठ जाओ। जब सरस्वती देवलोक से नीचे आती है, भूलोक में ढूंढना शुरू करती है योग्य व्यक्ति को, तो ढूंढते कहां आती है, एक नदी के किनारे आती है। वहां एक व्यक्ति तपस्या करता रहता है, उसको देखती है तो उसको लगता है ये योग्य व्यक्ति है, जाके उसके जीव पर बैठ जाती है। तो वो कौन था? वो था रामायण जिसने लिखा। वो कौन है? वो रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कौन था पहले? एक शिकारी था, एक लुटेरा था, है ना, जंगल में रहता था। तो इसी को भक्ति मार्ग में देखिए, मतलब मम्मा देखने में कितना साधारण, वो भी हमारे जैसे श्वेत वस्त्र धारिणी थी ना, वो भी एक ब्रह्मा कुमारी थी, लेकिन उनके हर कर्म भक्ति मार्ग में किस तरह से ग्रंथों के रूप में, पुराणों के रूप में लिखा गया है। तो इसके कारण इसलिए मम्मा को भक्ति मार्ग में बुद्धि धात्री भी कहते हैं। बुद्धिहीनों को अथवा मूर्खों को बुद्धिवान बनाने वाली। तो ये ऐसे मिसाल तो यज्ञ में बहुत है। मम्मा जिनको जिनको ज्ञान दिया है, मम्मा से जिन्होंने भी ज्ञान लिया है, वो कभी ज्ञान छोड़ के गए नहीं बता रहे। तो वैसे यही उदाहरण, और एक उदाहरण मिलता है कि कैसे ये मम्मा सद्बुद्धि देती है। इसका उदाहरण और एक यज्ञ में मिलता है कि जब जगदीश भाई कैसे एक लेखक बना, वो तो आप पढ़े होंगे ना। जब उसी प्रकार जिस दिन मम्मा की उन्होंने आरती गाई, तब बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा जगदीश के बुद्धि में बैठ जाओ। तो जगदीश भाई उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए थे आरती गाते गाते। तो फिर दोबारा बाबा ने पूछा, मम्मा बैठ गई? तो बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, हाँ बाबा बैठ गए। तो इसी एक उदाहरण को भक्ति मार्ग में एक वाल्मीकि का उदाहरण लिया और दूसरा और एक कहानी बनाई, आप जानते होंगे कालिदास की। कालिदास की कहानी जानते हैं ना, महाकवि कालिदास, जिन्होंने बहुत संस्कृत में काव्य लिखा। कैसे लिखा? वो एक गडरिया था, भेड़ बकरी चराने वाला। तब उसने एक राजकुमार से शादी की, तो राजकुमार ने कहा, ये तो मूर्ख निकला, जाओ तुम काली की तपस्या करो, उससे विद्या बुद्धि मांगो। जब उसने काली की पूजा की, अर्चना की, तपस्या की, तब काली ने पूछा, क्या चाहिए? धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए, क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? विद्या बुद्धि चाहिए। तब उसने क्या किया? उसके जीव पर ओम लिखा। तो वैसे ही बाबा ने जगदीश भाई से क्या कहा था, मम्मा इसके बुद्धि में बैठ जाओ, इसके जीव पर बैठ जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया। यह है मम्मा की कहानियां। ऐसे मम्मा की बहुत बहुत माना बहुत कहानियां लौकिक में है। एक बार कहते मम्मा अमृतसर गई थी। अमृतसर गई तो मतलब बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे भक्तों की आवाज आपको सुनने आती है? अब एक बार तो कई बार हम लोगों से पूछा है, बाप दादा को तो बच्चों का ये भक्तों के जो है ना आवाज सुनने में आती है। ब्रह्मा बाबा भी कहा करते थे, बताते बच्चे कोई पार्टी वाले आते थे तो क्या कहते थे, बच्चे आराम से नींद किया, अच्छी तरह नींद किया मुदबोन में आके? तो बच्चे बोलते, हाँ बाबा बहुत अच्छा नींद हुई। तो बाबा कहते, लेकिन ये बाबा को नींद ही नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, बच्चों की आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये सारे बाबा क्यों सुनाते? तो जितना जितना हम लोगों को बुद्धि महीन होती जाती है, मन बाबा की याद में मगन होता जाता है, उतना हाथ जो सूक्ष्म वाइब्रेशन है ना कैचिंग में आते। ऐसे एक बार मम्मा जब अमृतसर में थी, तब रात 11 बज गया था, तो वहां इधर उधर कमरे में टहल रहे थे। तब वहां के बहने ने बोला, मम्मा 11 बज गया है, आप रेस्ट करो। तो मम्मा ने कहा, नहीं बच्ची, एक बच्चा आ रहा है, बहुत दूर से निकला है, मम्मा से मिलने आ रहा है, इसलिए इंतजार कर रहे हूं। कोई एक भाई जो वैष्णव देवी का भगत था, वो उसको मम्मा का साक्षात्कार हुआ था, और मम्मा को भी उसको ये भी पता था मम्मा कहाँ है, तो वहां से अपने घर से रात भर वो पैदल करके आ रहा था। कहते रात 12 बजे सेंटर के दरवाजे पर आया, तो मम्मा ने नीचे उतर के गेट खोल के उसको अंदर ले आके बिठाया और पानी पिलाया, फिर उसके बाद बोलो बच्चा क्या हाल है, तो फिर उसने मम्मा के पांव पड़ा, नहीं मम्मा आपका दर्शन करने के लिए आया था, फिर मम्मा ने उसको टोली खिला के वापस भेजा। तो मम्मा भी एक पुरुषार्थी थी, हम भी पुरुषार्थी है, तो हमें क्यों नहीं अनुभव होता जैसे मम्मा को हुआ? कभी किसी ने सोचा इसके बारे में? आज भी बाबा ने बोला, जो जितना जितना श्रीमत पर हर कर्म करते हैं उनका जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल बाबा। वैसे ये जो खेल है संगमों का, सब धारणा और श्रीमत पर आधारित। तो बाबा जो बताता है, जैसे बताता है, उसको उसी रूप से स्वीकार करना, उस पर विश्वास रखना, फिर उसको अमल में लाना। देखिए शिव बाबा ने बताया ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को, तुम नारायण बनोगे, तुम लक्ष्मी बनोगे। तो हमें भी बाबा बताते, बच्चे तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो उनको भी वही बताया, हमें भी वही बताया, लेकिन वो तो उनका सीट फिक्स हो गया, यही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन हमारा सीट फिक्स है? हम अपने आप को लक्ष्मी नारायण बनते हैं ये विश्वास है? नहीं। मम्मा ने स्वीकार किया, बाबा ने बोला तुम ही राधे हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तो उन्होंने विश्वास कर लिया, उस अनुसार पुरुषार्थ किया। वैसे जब बाबा ने भी हमें बोला है तुम कृष्ण बनोगे, नारायण बनोगे, लक्ष्मी बनोगे, कृष्ण बनोगे, तो हमने उसको स्वीकार किया। एक बार बाबा ने यह भी बोला था, बच्चे तुम तैयार हो जाओ 108 की माला में आने के लिए। तो बच्चा कहते बाबा सिर्फ 108 है, 108 से कहां है, तो हजारों लाखों बाबा के बच्चे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे बन जाओ, मैं क्या करूंगा, लड़िया लगाऊंगा, ये जो 1000, ये 100, 108, 16000, ये सारे क्या है, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग 100% सत्य नहीं है, वो भक्ति मार्ग जो है ना यादगार है, बच्चों ने जो माला बनाए विजय प्राप्त किए उसका यादगार उन्होंने संख्या में बना दिया 108। लेकिन तुम बच्चे तैयार हो जाओ, मैं क्या करूंगा, 108 की लड़िया बनाऊंगा। वैसे ही अगर अब इसमें भी एक राज है, देखो कृष्ण और नारायण एक एक नहीं है, कृष्ण हो, राधा हो, लक्ष्मी हो, नारायण हो, सिर्फ एक ही नहीं है। सतयुग में कितने गद्दियां है, आठ गद्दियां। कैसे आठ गद्दियां, ऐसे आठ गद्दियां, ऐसे आठ गद्दियां। अब अभी कोई राजा किसको कहा जाता है, अगर किसी को हम राजा कहते हैं तो किसको राजा कहते हैं, जिसके प्रजा होती है ना, जिसकी प्रजा होती है उसको राजा कहते हैं। तो महाराजा किसको बोलते हैं, आप कोई बोलते नहीं तो मैं क्या करूं, या आप जागे हैं या सोए हैं, क्या समझो, हाँ कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। अगर किसी को महाराजा कहते हैं तो किस आधार पर कहते हैं, जिसके अंडर कई राजाएं होते हैं उसको महाराजा कहते हैं। तो फिर किसी को विश्व महाराजा कहते हैं तो जिसके अंडर कई महाराजाएं होते हैं उनको विश्व महाराजा कहते हैं। अगर महाराजा की जो बेटी है या बेटा है, लड़का या लड़की है, तो उनकी जो अगर शादी करनी है तो प्रजा से कराएगा, महाराजा महाराजा से लेगा ना? क्या सोचते हैं? सत्यु में सिर्फ एक ही महाराजा महारानी रहेंगे और कई रहेंगे? अगर समझो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है, ठीक है, उनको दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। अगर वो उसको बेटे के लिए अगर कन्या लेना है तो कहां से लेगा? महाराजा से लेगा ना, राजा से तो नहीं लेगा। या उसकी बेटी को अगर शादी करानी है कहां जाएगा? महाराजे के पास ही जाएगा। तो इसलिए कई महाराजाए होंगे, कई राजाएं होंगे, कई अमीर साहूकार प्रजा होंगे और कई प्रजा होंगे। तो इतने सारे पद है, इसके आधार पर बाबा कहते बच्चे तुम पुरुषार्थ करके तो देखो, पद देना मेरा काम है, तुम राजा बनो, संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनो, डेफिनेटली मैं तुमको राजा बनाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण तो सिर्फ मम्मा बाबा बनते हैं और आदि रतन है, इतने अति अति महारथी लोग हैं, वो पुरुषार्थ करेंगे तो हम क्या बस ठीक है? नहीं, बाबा के जो बातों पर, बाबा के जो महावाक्यों पर विश्वास रखकर मानकर अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, जरूर हम उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। ये विशेषता मम्मा में थी, बाबा ने जो कहा सत्यवचन महाराज। आपने ये भी कई बार सुना होगा, एक बार बाबा क्लास में मुरली सुना रहे थे, शिव बाबा ने बोला बच्चे तुम तो बंदर लायक थे, अभी मैं मंदिर लायक बना रहा हूं। तो फिर बाबा पूछता है ना मम्मा, हम पहले बंदर लायक थे ना? तो पहले मम्मा तो चुप ही रही। फिर बाबा पूछते हैं, हाँ मम्मा हम तो बंदर जैसे थे ना? तो मम्मा कहा, जी बाबा। इस प्रकार बाबा पर उनको इतना अचल विश्वास था कि बाबा जो बोले, क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा में सिर्फ ब्रह्मा बाबा को वो नहीं देखते थे, शिव बाबा को देखते थे। हम देखते हैं, सबसे बड़ी बात है, बाबा कई बार कहते हैं ना, साकर बाबा कोई फोटो खींचने के लिए जाते तो मना करते थे, तुम किसका फोटो निकाल रहे हो, शिव बाबा तो दिखाई नहीं पड़ता। तो रमेश भाई भी अपने अनुभव में सुनाया था, तो बाबा ने कहा अब क्या करेगा? तो फिर उन्होंने बोला, बाबा आप में शिव बाबा को देखते हैं। तो फिर बाबा ने छुट्टी दिया, ठीक है फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाबा में हम शिव बाबा को देखना चाहिए। अगर आप देखिए आदि रतन जो है, दादियां जो है, दादियों में कोई डिफरेंस आया नहीं बता रहे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ये भावना हमारे में है ही नहीं, हम तो भगवान ही इनके शरीर में है, यही भगवान है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में हमेशा उन्होंने शिव बाबा को देखा। तो ब्रह्मा बाबा के महावाक्य अभी हम अलग अलग करते हैं, अब पहले दादियां जब मुरली सुनाती थी उस समय बोलते थे क्या ये किसके महावाक्य है, ये ब्रह्मा बाबा ने बोला, शिव बाबा ने बोला? अभी हमारी टीचर बहन सुनाती है ना, ये ब्रह्मा बाबा ने बोला, ये शिव बाबा का महावाक्य है, अभी डिवाइड करते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऐसे अगर हम बातों में बाबा के महावाक्यों में अगर हम अंतर करते जाएंगे तो फिर हम संशय में आ जाएंगे, फिर बाबा को बोलना पड़ा, बच्चे ये ब्रह्मा बाबा कुछ भी बोलता है, अगर गलत भी बोलता है उसके जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन दादियों में ऐसा नहीं था, ब्रह्मा बाबा सम्मुख से जो भी शब्द निकला वो समझते थे ये शिव बाबा का महावाक्य। इसी प्रकार मम्मा का तो कई रूप है, मम्मा को तो कहते हैं दुर्गा रूप ही उनका ही था, सरस्वती का रूप था। तो सरस्वती का जैसा कहते हैं, सरस्वती का तीन रूप है, तो सरस्वती का जन्म भी कैसा हुआ ये बता, एक तो श्री कृष्ण के जीव से हुआ, और दूसरा कहता है एक सरस्वती का जो मूल स्वरूप है वो परमेश्वरी बोलते हैं, परमेश्वरी परमेश्वरी। तो परमेश्वर का जो तीन रूप है, एक है सरस्वती, दूसरा महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। जो सरस्वती का जो रूप है ना, उसका सत्व प्रधान रूप बताते हैं। तो यह भी कहा जाता है सरस्वती का निवास स्थान तीन है, क्योंकि मैं थोड़ा लौकिक और भक्ति मार्ग का और ये ज्ञान मार्ग का थोड़ा कंपेयर करके बताता हूं, क्योंकि बाकी तो मम्मा के बारे में कहानी तो आपने बड़ों से बहुत सुनी होगी, थोड़ा मैं ये तो अलग ढंग से बताता हूं। तो बताते हैं सरस्वती का तीन स्थान है रहने का। एक है पृथ्वी, पृथ्वी पर भी रहती थी, और दूसरा है आकाश, तीसरा स्थान है स्वर्ग। तो ये तीन का आप अर्थ समझे होंगे ना, बाबा के बच्चों को तो बहुत सहज इसका अर्थ हो जाता है। पृथ्वी पर उसका नाम था, पृथ्वी पर रहने वाले सरस्वती का नाम था इला, और जो आकाश में रहने वाली सरस्वती का नाम था सरस्वती, और स्वर्ग में रहने वाले सरस्वती का नाम क्या था? लक्ष्मी। तो हम जानते हैं पृथ्वी में रहने वाली जो इला या सरस्वती है, वही भविष्य में महालक्ष्मी बनते। आज भी बाबा ने बोला संगम में जो जगदम्बा है, जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वही सत्युग में महालक्ष्मी बनती है, धन की देवी बनती है। लेकिन वो महालक्ष्मी सरस्वती नहीं बनती, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं। तो फिर यही कहते हैं सरस्वती आकाश में रहती थी, इसका अर्थ क्या है? उसका वर्णन भी आता है सरस्वती आकाश गामिनी, आकाश में टहलने वाली। तो मम्मा की जो अवस्था है ना, ऐसी थी। जब भी आप मम्मा के चित्र देखो, उनका आंखें देखिए, देख लीजिए ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है उनका जो है ना, यहां है ही नहीं, ऊपर आधी बंद आधी खुली आंखें, ऐसा लगता है जैसा ऊपर रहती है। तो एक बार सब्जी काटते समय किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा आप क्या सोच रही है? तो मम्मा ने क्या कहा, अभी मम्मा वैकुंठवासिनी बन के महारानी लक्ष्मी बन के अपना राज्य देख रही है, बैठी है सब्जी काटने, लेकिन उनकी बुद्धि कहाँ है? वैकुंठ लोक में है। उसी प्रकार मम्मा चलते फिरते भी उनका जो बुद्धि है ना, ऊपर रहती थी बाबा के पास, इसलिए आकाश गामिनी। उस समय तो ये शब्द नहीं थे ना, फरिश्ता बनना सूक्ष्म देवता बनना ये थे नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिक उनकी अवस्था ऐसी थी, इसलिए सरस्वती को आकाश गामिनी बोलते। वैसे ही जैसे मम्मा चलती है तो कैसे चलती थी, आजकल हम चलते हैं ना, कैसे चलते हैं? चप्पल पहन के जूते पहन के चलते हैं तो आसपास वाले घूम के देखना पड़ता है ये कौन आ रहा है, छट पट 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 कट कट कट। कहते हैं मम्मा कहती थी कोई ऐसे चलने वालों को देखे धरती को क्यों दुख दे रहे हो, ऐसा चलो किसी को पता ही नहीं पड़े। आज भी बाबा ने बोला ना किसी को दुख नहीं देना, तो जोर जोर से पांव रख के चलना भी धरती को दुख देना, इसलिए हमारे चलन में भी इतनी सूक्ष्मता होनी चाहिए, ये मम्मा ने सिखाया। ऐसे मम्मा का पुरुषार्थ ऐसे करती थी जैसे रात रात भर के बैठ के योग करती थी। बताते हैं जब पूनम की रात आती थी, चांदनी रात थी, जब छत पे जाके कुर्सी लेकर मम्मा योग करती थी बता रहे हैं। तो वो लोग कितना पुरुषार्थ किया, तो उनसे हमें भी ये सीखना है कि हम कितना योग करते हैं, कितना एकांतवासी रहते हैं, कितना एकाग्र रहते हैं। तो फिर जो भी मम्मा को देखते थे तो कहा करते हैं मम्मा की जो आंखें है ना हमेशा गीली दिखाई पड़ती थी। सुना है किसी ने? गीली माना आंसू भरे, पूरा आंसू नहीं लेकिन आंखें हमेशा जैसे लाल लाल गीली गीली दिखाई पड़ती थी। आंखें गीली कब होती है? बहनें तो अच्छी तरह जानते, बहनें माता है, कोई बताएंगे आंखें गीली कब होती है? बोली बोली किसी के स्नेह में, किसी के प्यार में मन डूबा रहता है तब आंखें गीली होती है। जब प्यार उभर आता है ना, इसका अर्थ यह हुआ मम्मा का मन हमेशा बाबा की याद में मग्न रहा करता था। कभी भी जो पांडव वन में आप खड़ा हुआ जो पोज है ना मम्मा का, आप देख लीजिए उनकी आंखें कैसे है, बहुत मोटी मोटी लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे गीले गीले, कोई किसी की याद में खोई हुई है। इसलिए पार्वती को भी विशालाक्षी बोलते हैं, विशालाक्षी माना अक्षी माना आंखें, विशाल माना बड़े मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें वाले। देखिए ये संगम युग में मम्मा जो है जैसे है, उसका वर्णन भक्ति मार्ग में कितना है। और एक बार मम्मा यूपी में गई थी, कानपुर गई थी बता रहे, तो कानपुर के गांव में गीता पाठशाला था तो वहां उनको जाना था। अब देखिए आजकल हम लोग अगर कहीं सेवा करने जाते हैं तो वहां सब सुख सुविधा चाहिए, कार होना चाहिए, हाँ अच्छा कमरा होना चाहिए, एग्जीबिशन के लिए अच्छा मकान होना चाहिए तब हम जाएंगे। लेकिन मम्मा जो आदि देवी, जो विश्व महारानी बनने वाली है, जो जगदम्बा सरस्वती थी, तो उन्होंने कानपुर से बस में बैठ के वो गांव गई। बरसात के दिन थे तो खूब बारिश पड़ गई, वो लोग वहां इंतजार कर रहे हैं वहां के बाबा के बच्चे छोटे से गांव में, तो गाड़ी रुक गई, नाला भर आए। तो फिर क्या हुआ, दोपहर बीत गया, सुबह से मम्मा निकली है, वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। शाम क्यों, रात हो गई। तो तब तक बच्चे वहां के गांव के बच्चे इंतजार करते करते बैठे हुए थे, जब मम्मा पहुंची रात हो गई थी। फिर सीधा मम्मा ने जाकर रिफ्रेश होके सबसे पहले क्या किया, क्या किया होगा, जो क्लास चलती थी वो मकान में जाके सबसे पहले मम्मा ने खाना बनाया। खाना बना के सब बच्चों को जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं उनको खाना खिलाया, फिर उसके बाद क्लास कराया। ये है मम्मा, मां पालना की शक्ति। ये कहानी सुनने और सुनाने का अर्थ भावार्थ क्या है, हमें भी वो भावना जागृत होना चाहिए। ज्ञान तो बहुत है हमारे पास और ज्ञान सुनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आज दुनिया हमारे से क्या चाहती है, धारणा चाहिए। हमारा व्यवहार, जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे में कितना है, हम ज्ञान में कितने सालों से चल रही है ये मुख्य नहीं है, हमारे में ज्ञान कितने साल से चल रहा है ये मुख्य है। ये ज्ञान सरोवर के एक स्टेज पर एक छोटी सी बच्ची आई थी, शायद 3-4 साल की होगी। वो किसी ने पूछा अब कितने साल से ज्ञान में हो, वो बोलते बोलते बोले मैं 3 साल से ज्ञान मेरे में चल रहा है, वो बोला उसने। तो सब लोगों ने ताली बजाया, सब बोलते हैं हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान हमारे में कितने साल से चल रहा है। भले वो बच्ची गलती से बोल गई होगी लेकिन है तो सच है ना, ज्ञान में हम कितने साल है ये मुख्य नहीं है, ज्ञान कितने सालों से हमारे में है ये है मुख्य। इसलिए बाबा आज यही चाहता है, बच्चे अगर देवता बनना है भविष्य में, वर्तमान में बनो, क्योंकि यहां बनेंगे तब तो वहां बनेंगे, क्योंकि यहां से बाबा आज भी बोला तुम बच्चे यहां भरतू जाएंगे, हाथ भर के जाएंगे तब जाके वहां भोगेंगे, लेकिन यहां नहीं भरेंगे। इसका अर्थ क्या है? हम यहां देवता नहीं बनेंगे, वहां कभी नहीं बनेंगे। हम यहां राजा नहीं बनेंगे, वहां कभी नहीं बनेंगे। इसलिए सबसे पहले बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने सूक्ष्म इंद्रिया स्थूल इंद्रिया इनके ऊपर राजा बनो, मन बुद्धि संस्कार पर। ये सारे मम्मा बाबा ने करके दिखाया। एक बार किसी दादी को कोई इंजेक्शन लगाना था, तब इंजेक्शन लगाते हैं तो हा बोला उसने, तो बाबा बोलता है तुम एक छोटी से दर्द को सहन नहीं करोगे तो वहां राजा कैसे बनोगे। बात छोटी छोटी है, हम लोग थोड़ा से दर्द हो गया तो हा बाबा 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 कहते हैं ना। वो जो पेड़ बड़ा होने से पहले वो जब छोटा होता है तभी पता पड़ता है लक्षण से, ऐसा तो राजा बनना हम देवता बनने तो दैवी गुणों का जो लक्षण है धारणा है अभी वर्तमान में चाहिए। इसलिए बाबा यही कहते हैं बच्चे बहुत कुछ मैंने सुना लिया, बच्चे भी सुना लिए होंगे मेरे से अच्छा, बाबा कहते मेरे से भी अच्छा ज्ञान सुनाते हैं बच्चे, लेकिन अभी क्या करना है जो सुना है उसका धारण करो। इसलिए मुझे जो लग रहा है मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है तो बाबा ने जो बोलना था वो बोल लिया। बहुत 18 अध्याय में आता है ना गीता में, अर्जुन मुझे जो सुनाना था सुना लिया, बाकी करना ना करना तुम्हारे ऊपर। लेकिन वो भक्ति मार्ग की गीता, लेकिन ये संगम युग गीता में बाबा क्या कहता है, मैंने बहुत कुछ सुना लिया अभी करना है, तुमको करना ही है, तुम्हें ही करना है, क्यों तुम्हारे बगैर और कोई करने वाले बनने वाले नहीं। तो इसलिए हम कहते भविष्य में देवता बनने से पहले वर्तमान में अपने आप को देवत्व पर स्थित हो जीवन बिताए और दूसरों के लिए आदर्श बने। ओम शांति।